मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
हरे कृष्णा।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन दिवस पर यहाँ श्री श्री राधा गोकुल आनंद मंदिर इस्कॉन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। भगवान के जन्म दिवस को मनाने से हमें बहुत आध्यात्मिक लाभ मिलता है। हमारी संस्कृति पूरी तरह से भगवान के भक्ति के ऊपर आधारित है। पुराने जमाने में लोग ऐसे अनुष्ठान उत्सव बड़े धूमधाम से, श्रद्धा से, भक्ति भावना से मनाते थे। इसलिए समाज भर में भक्ति की भावना हमेशा रहा करती थी। आजकल दुर्भाग्य से ऐसे अनुष्ठान नहीं मनाए जाते हैं, केवल भौतिक अनुष्ठान मनाए जाते हैं। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि स्वयं भगवान अपने मूल श्री कृष्ण या गोविंद के रूप में यहाँ पर भारतवर्ष में प्रकट हुए। वैसे तो भगवान अपने धाम में रहते हैं जो कि बहुत बहुत दूर है, इस भौतिक जगत से भी परे हैं उनका धाम। लेकिन केवल हम सब के ऊपर कृपा करने के लिए श्री कृष्ण यहाँ पर पधारे। यहाँ आकर अपने शुद्ध भक्तों के साथ में, अपने पार्षदों के साथ में उन्होंने कई सुंदर लीलाएं किए हमारा मन आकर्षित करने के लिए। वैसे तो भगवद गीता में स्वतः श्री कृष्ण घोषणा करते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं साधुओं की रक्षा करने के लिए आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए आता हूँ और धर्म की संस्थापना करने के लिए आता हूँ। परंतु ये सब भगवान के अवतीर्ण होने के असली कारण नहीं है। भगवान के अवतार लेने का असली मूल कारण है कि वो अपनी सुंदर लीलाएं यहाँ पृथ्वी लोक पर इस भौतिक जगत में प्रदर्शित करना चाहते हैं और हम सबको याद दिलाना चाहते हैं कि उनकी सेवा करना, उनकी भक्ति करना यही जीवन का उद्देश्य है। इस समय बाहर दुनिया में कितने सारे चीजें हैं जो हमको आकर्षित करती हैं। अच्छे अच्छे सिनेमा हैं, होटल हैं, बड़े बड़े घर, गाड़ी, बंगले हैं, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, गहने हैं, पैसा है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे मन को प्रभावित करती हैं और हमारे मन में ये इच्छा हो जाती है कि काश हमारे पास भी ये सब चीजें होती तो कितना अच्छा होता। अगर हमारे पास ये सब होता तो हम भी सुखी रहते। इस तरह से सारे दुनिया भर में ये सबसे बड़ा भ्रम है कि हम संसार की वस्तुओं को प्राप्त करके खुश हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है। आज तक संसार की वस्तुओं का भोग करके कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुआ है। आज वर्तमान काल में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि संसार का भोग करके खुश हो, और भविष्य में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहेगा जो कि संसार का भोग करके सुखी रह पाएगा। ये असंभव है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से बतलाया है कि ये जगत दुखालयम अशाश्वतम है। दुख का आलय है ये। दुख के सागर में सुख कहाँ से मिलेगा हमको? संभव नहीं है। तो जो लोग केवल संसार के सुविधाओं के पीछे, संसार के भोग के पीछे भागते रहते हैं, वो भूल जाते हैं कि वो अपना मूल्यवान मनुष्य जीवन व्यर्थ गवा रहे हैं। मनुष्य जीवन तो भगवान की अनमोल भेंट है। हमें उनकी प्राप्ति करने के लिए ये एकमात्र जीवन है। पशु योनि में, पक्षी योनि में, कीड़े के योनि में ये सब करना बहुत कठिन है, प्राय असंभव है, लेकिन मनुष्य जीवन भगवान ने केवल उनके प्राप्ति करने के लिए किया हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लेते हैं तो हमको इस बात की याद दिलाने के लिए आते हैं कि देखो, भूलना नहीं कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं, नते विदुः स्वार्थ गतिम् हि विष्णुम् दुराशयाये बहिरर्थमानिनः अंधा यथान्धेरुपदीयमानात् प्रेतीश तंत्रामुरुदाम निबद्धाः। वो कहते हैं कि लोगों को ये नहीं मालूम कि उनके जीवन का उद्देश्य है भगवान श्री विष्णु या कृष्ण की प्राप्ति करना। उनका मन भ्रमित हो चुका है, दुराशया बुरी आशाएं उनके मन में आ गई हैं। बुरी आशाएं कौन सी हैं? जो भी संसार के भोग करने की इच्छा है उसको दुराशा कहते हैं। प्रहलाद, प्रहलाद का नाम तो आप सबने सुना है। प्रहलाद तो भक्त शिरोमणि है, भक्तों में से श्रेष्ठ। और प्रहलाद कहते हैं कि संसार की भोग करने की इच्छा जब हमारे मन में हम रखते हैं तो ये एक दुराशा है, बुरी आशा है, हमको इसे त्यागना चाहिए। संसार को भोगने की इच्छा को त्याग कर हमें भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि केवल उनके शरण में जाकर हम सुख शांति और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अवतीर्ण होते हैं, पृथ्वी लोक पर सुंदर लीलाओं की रचना करते हैं, जिससे कि हम इन लीलाओं के बारे में सुने, पढ़ें, बोलें, चिंतन मनन करें और इससे हमारा मन उनकी लीलाओं के प्रति आकर्षित हो जाए। जब भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का, उनके नाम का, उनके सुंदर रूप आदि का हमारे हृदय में उदय होगा तो उस समय इस संसार के भोग को हम भूल जाएंगे। हम समझ जाएंगे कि कृष्ण भगवान के भक्ति के सामने सारा संसार, सारी दुनिया तुच्छ है। तो जब इस तरह से हमारा मन भगवान कृष्ण के नाम में, रूप में, लीलाओं में इत्यादि मग्न हो जाएगा तब हमारे जीवन से दुख दूर भाग जाएंगे, हम सुख के सागर में डूबने लगेंगे और अंततः जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम में लौटकर चले जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज से 5000 वर्ष पूर्व हुआ, वृंदावन में, मथुरा, कंस के जेल में, कारागर में। लेकिन श्री कृष्ण का जन्म वास्तव में जन्म नहीं है, जन्म तो हम सब लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण जन्म नहीं लेते, भगवान केवल प्रकट होते हैं। हम लोग मर जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण मरते नहीं है, वो केवल अप्रकट हो जाते हैं। बल्कि अगर भगवद गीता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम सब भी नहीं मरते हैं, क्योंकि हम सब तो आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं हैं। मृत्यु तो केवल इस शरीर का विनाश है, लेकिन आत्मा का नाश तो कभी नहीं हो सकता है, इसलिए हम सब भी अमर हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी तो अवश्य अमर हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं या प्रकट होते हैं इस पृथ्वी लोक के ऊपर, तो उनका प्राकट्य या जन्म साधारण नहीं होता है। उनके माता का नाम है देवकी, पिता का नाम है वसुदेव। दोनों को दुष्ट राजा कंस ने कारागार में बंद कर दिया था और भगवान श्री कृष्ण देवकी के आठवें पुत्र के रूप में उनके गर्भ से बाहर प्रकट हुए। देवकी को किसी दवाखाने में, हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ा, उनको सीजरियन ऑपरेशन नहीं करना पड़ा, सीधे अंदर से बाहर प्रकट हो गए श्री कृष्ण। बस देवकी देवी को कुछ दर्द नहीं हुआ। आप तो जानते हैं जब कोई महिला बच्चे को जन्म देती है तो कितना दर्द होता है, माँ को भी होता है, बच्चे को भी होता है, बहुत दर्द होता है। लेकिन कृष्ण भगवान ऐसे बाहर नहीं आए, अंदर बाहर, बस देवकी के पेट में थे, दूसरे क्षण बाहर। जादू के समान। इसलिए हम कहते हैं कि उनका जन्म असाधारण है। ये पहला कारण है जिसके लिए हम समझते हैं कि श्री कृष्ण का प्राकट्य असाधारण अलौकिक है। दूसरी बात है, जब श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से बाहर प्रकट हुए तो उस समय उनके दो हाथ नहीं थे, चार हाथ थे, चतुर्भुज रूप में आए। हालांकि छोटे से बच्चे थे, लेकिन छोटे से बच्चे होते हुए चार भुजाएं, चतुर्भुज रूप में वो प्रकट हुए। क्या आपने कहीं देखा है ऐसा बच्चा जो कि चार हाथों से जन्म लेता है? नहीं। ऐसे कभी कभी पढ़ने में आता है अखबार में, दो बच्चे जुड़ के आ गए हैं, या किसी एक बच्चे के छह उंगलियां हैं पांच के बजाय। ऐसी सारी चीजें हमें सुनने में आती हैं, पढ़ने में आती हैं, लेकिन ऐसे किसी बच्चे के बारे में हमने सुना नहीं है या देखा नहीं है जिनके जन्म के समय चार हाथ हुए हों। तो ये दूसरा कारण है जिसकी वजह से हम जानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म बड़ा अलौकिक और असाधारण है। तीसरी बात, भगवान श्री कृष्ण जब अपनी मां के गर्भ से प्रकट हुए तो उनके सर पे भर के बाल थे। ऐसे किसी बच्चे को आपने देखा है मां के पेट से आते समय बिल्कुल भरे हुए बाल सर के ऊपर? लेकिन श्री कृष्ण जब आए तो सुंदर काले घुंघराले बाल थे उनके। चौथी बात, जब श्री कृष्ण अपने मां के गर्भ से बाहर प्रकट हुए उनके दिव्य शरीर के ऊपर नाना प्रकार के आभूषण थे, गहने थे, सोने के नाना प्रकार के अनमोल रत्न वगैरह थे। इन चीजों से श्री कृष्ण का दिव्य शरीर सुशोभित था। क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो मां के गर्भ से जन्म लेते समय तरह तरह के गहनों को पहनकर जन्म लेता है? ऐसा कोई बच्चा हमें नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए हम जानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म बहुत ही अलौकिक है, विशेष है। इसके अलावा जब श्री कृष्ण प्रकट हुए, हंस के प्रकट हुए, हंसते हंसते हसमुख चेहरे से हल्की मुस्कान उनके चेहरे पे थी जब वो प्रकट हुए। जब हमारे अनुभव में बच्चे कैसे पैदा होते हैं, हंस के बाहर आते हैं, माँ भी रोती है और बच्चा भी रोता है। बच्चा तो बहुत ज्यादा रोता है, और अगर बच्चा रोता नहीं है तो डॉक्टर बच्चे को क्या करता है, उल्टा करता है और थप्पड़ मारता है। फिर बच्चा रोने लगता है, उन्हें समझता है कि हाँ अभी बच्चा ठीक ठाक है। तो यहाँ पर इस दुनिया में बच्चे जब जन्म लेते हैं तो रोते रोते आते हैं, हाँ जाते हैं तो भी रोते रोते जाते हैं, वो भी है। कृष्ण भगवान जब गए तब भी रोकर नहीं गए। और इतना ही नहीं, ये संसार में जब लोग जन्म लेते हैं रोते रोते आते हैं, रोते रोते जाते हैं, और बीच में भी रोते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे जीवन में ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। मतलब शुरुआत से अंत तक रोते रोते बैठना। लेकिन जब हम श्री कृष्ण के बारे में जानेंगे, उनके बारे में सुनेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो हमारा जीवन आनंद से पूर्ण हो जाएगा। तो भले हम रोते हुए आएंगे, लेकिन जीते समय हंसते हुए जिएंगे और जाते समय भी हंसते हुए चले जाएंगे। ये भक्ति करने का लाभ है। और कहाँ जाएंगे हम? श्री कृष्ण के पास जाएंगे, उनके धाम में जाएंगे। तो श्री कृष्ण हंसते हुए चले आए, प्रकट हुए। और एक बात है कि श्री कृष्ण एक जेल में जन्म लिए, डरे नहीं कि अरे क्या होगा, मेरे माता पिता जेल में हैं, अब वहां पे कंस आक्रमण करेगा हमारे ऊपर तो हमारा क्या होगा। बिल्कुल निडर थे। और जब प्रकट हुए देवकी और वसुदेव के सामने तो देवकी वसुदेव घबरा गए, क्योंकि इसके पहले कंस ने उनके छह पुत्रों की हत्या कर ही डाली थी। सातवें पुत्र का गर्भपात हो गया था खुद ब खुद, ऐसा लोग समझ रहे थे। लेकिन वास्तव में सातवें पुत्र जो थे उनके, वो तो बलराम थे, अनंत शेष। तो खैर, इस तरह से श्री कृष्ण का जन्म बड़ा अद्भुत था। वैसे श्री कृष्ण तो सबके माता पिता हैं, पितामहस्य जगतो माता पाता माता धाता पितामह। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सभी का माता हूँ, पिता हूँ, सब कुछ हूँ। भगवान श्री कृष्ण ही हमारे पालन पोषण करने वाले हैं, वही हमें जन्म देते हैं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण का के माता पिता कैसे हो सकते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो अपने किसी विशेष भक्त को चुनते हैं और उनको माता पिता बनने का एक मौका देते हैं, ताकि उनके साथ में वो प्रेम का आदान प्रदान करें। तो वास्तव में श्री कृष्ण ही वसुदेव और देवकी के परम पिता हैं, लेकिन इस जन्म में वो उनके पुत्र बन के आए। तो देखिए कितना अद्भुत है। और साथ साथ जैसा कि श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं कि सब कुछ मुझसे उत्पन्न होता है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समन्विताः। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये सारे आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड सब मुझसे उत्पन्न होते हैं, और जो अच्छी तरह से इस बात को जानता है वो बड़े भक्ति भाव से मेरा भजन करता है। तो भगवान श्री कृष्ण सारे सृष्टि के उद्गम हैं, सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है, बल्कि सब कुछ उनके उदर में, उनके पेट में है। लेकिन अब वही भगवान जिनके पेट में सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, आज वो देवकी के पेट में गए हैं। कितनी अद्भुत बात। इससे हम जान सकते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म हमारे जन्म की तरह नहीं था, और न ही उनके कर्म हमारे कर्मों की तरह हैं। इसलिए भगवत गीता पढ़कर, इसको जानकर हम समझ जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को एक साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए, हमें जान लेना चाहिए कि ये स्वयं भगवान हैं, और उनके कार्य, उनका प्राकट्य ये दिव्य है। ऐसा जान लेने से इस संसार के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः तत्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति बड़े श्रद्धा से ये जान लेता है कि मेरा जन्म और मेरे कर्म ये दिव्य हैं, इस भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं है इनका, वो व्यक्ति को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, बल्कि वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी के समय हमें स्मरण करना चाहिए कि श्री कृष्ण कितने सुंदर ढंग से प्रकट हुए, केवल हमारे ऊपर लीला हमारे ऊपर कृपा बरसाने के लिए। तो हमें सब श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, उनका भक्त बनना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण मनुष्य समाज में रहे और उनका उठना बैठना, खाना पीना, रहन सहन, वो सब एक साधारण मनुष्य की तरह था, तो लोग उनको गलत समझते हैं, उनको एक साधारण व्यक्ति समझते हैं। लेकिन ये श्री कृष्ण की लीला है। जो व्यक्ति ज्ञान के दृष्टि से देखता है वो कभी भी श्री कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति नहीं मानेगा। इसके बारे में महाभारत और श्रीमद् भागवत की एक सुंदर कथा आपको बताना चाहेंगे। जब पांडव वनवास में गए थे तो उनके साथ में कई ऋषि मुनि ब्राह्मण भी गए थे, और जंगल में जाकर दिन भर करते क्या, तो ऋषि मुनियों के संग में बैठकर शास्त्रों की बातें सुनते, भक्ति के बारे में सुनते, पौराणिक कथाओं को सुनते, इस तरह से उनका समय बीतता। कई साल ऐसे बीत गए। एक बार हुआ ये कि स्वयं श्री कृष्ण, जो कि पांडवों के प्राण हैं, पांडवों के मित्र हैं, वो उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए जंगल में चले आए। तो पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई कि उनके आराध्य देव, उनका प्रिय मित्र आज उनके बीच में यहां आया है। उनका सारा दुख मिट गया श्री कृष्ण को देखकर। वहां पर नारद मुनि भी पधारे, साथ साथ में कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि थे वहां पर, और ऐसी अवस्था में सब लोग बैठकर अच्छी तरह से चर्चा कर रहे थे। श्री कृष्ण अपनी खबर सुना रहे थे, पांडव अपनी खबर सुना रहे थे। अचानक उस समय आकाश पथ से एक बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिशाली ऋषि प्रकट हुए, जिनका नाम था मार्कंडेय ऋषि। मृकंड ऋषि के पुत्र थे, इसलिए उनका नाम हुआ मार्कंडेय ऋषि। यहाँ पास में मार्कंडेय नदी भी है ना, तो ये मार्कंडेय ऋषि वैसे बहुत वृद्ध थे, लेकिन दिखने में केवल एक तरुण, एक युवक दिखते थे, लेकिन लाखों लाखों साल उनकी उम्र थी। भगवान का उनका आशीर्वाद हुआ था कि कभी भी वो तरुण अवस्था में रहेंगे और जब मन करे तब उनकी मृत्यु होगी, उसके पहले नहीं। मार्कंडेय ऋषि वास्तव में इतने बूढ़े थे कि ब्रह्मा जी के सृष्टि के सृजन के समय से उनका जीवन था, लेकिन दिखने में एक तरुण। और इतने बूढ़े होने के कारण उनके इस ब्रह्मांड के सारे जो इतिहास हैं वो अच्छी तरह से मालूम थे। साथ साथ भगवान की का आशीर्वाद उनके ऊपर ये भी था कि उनकी स्मृति शक्ति हमेशा तेज रहेगी, इसलिए वो किसी भी बात को भूलते नहीं। जब मार्कंडेय ऋषि वहां पर प्रकट हुए तो पांडवों ने, अन्य ऋषि मुनियों ने, बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका स्वागत किया, क्योंकि श्री कृष्ण अभी मनुष्य लीला कर रहे थे, इसलिए जैसे कि एक मनुष्य को करना चाहिए उन्होंने भी किया। एक ऋषि मुनि अपने पास आए हैं तो उनका स्वागत करना, सत्कार करना हमारा कर्तव्य बनता है, ये संस्कृति है। तो वहां मार्कंडेय ऋषि बैठ गए सबके बीच में और सारे उपस्थित लोगों ने वहां मार्कंडेय ऋषि से निवेदन किया कि कृपया हमें पौराणिक कथाएं सुनाइए, ये ब्रह्मांड का सारा इतिहास आप जानते हैं, क्योंकि आपके लाखों लाखों साल हो गए यहां पर रहकर। तो सबके निवेदन करने पर मार्कंडेय ऋषि तैयार हो गए कथा करने के लिए। उस समय संस्कृति ऐसे थी कि लोगों को शास्त्रों की बातें सुनने के लिए, भगवान की कथाएं सुनने के लिए बहुत रुचि हुआ करती थी। लोग बहुत तकलीफ लेते थे कोई भी सत्संग में जाने के लिए, बहुत आतुर होते थे। जहां भी सत्संग करने का मौका मिलता, जहां भगवान की और उनके महान भक्तों की कथाएं चलती, वहां अवश्य जाते। आजकल दुर्भाग्य से वो परिस्थिति नहीं रही। अगर हम कहीं पर सिनेमा या ऐसे कोई पार्टी करें तो बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन जब हम सत्संग के लिए लोगों को निमंत्रण करते हैं तो बहुत कम लोग आते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। तो खैर, उस समय युधिष्ठिर महाराज और अन्य वहां पे जो भी उपस्थित थे तैयार हुए मार्कंडेय ऋषि से कथाएं सुनने के लिए। श्री कृष्ण भी, जो कि स्वयं भगवान है, वो भी बड़े ध्यान से, आदर से अपने आसन में बैठे मार्कंडेय ऋषि से कुछ बातें सुनने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान होने के बावजूद हमें एक आदर्श पेश कर रहे हैं कि कैसे हमें भक्तों के बीच में बैठकर भगवान के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए। फिर युधिष्ठिर महाराज ने मार्कंडेय ऋषि से प्रश्न किए कि मुनिवर, कृपया हमें ये बताइए कि हमें कर्मों के फल किस तरह से मिलते हैं। अब देखिए, दुर्योधन इतना दुष्ट है, लेकिन वो अभी हमारे राज को हड़प करके आराम कर रहा है, वो ऐश कर रहा है, और हम लोग इतने पुण्यवान हैं, धर्म परायण है, लेकिन हमारी दशा देखो, हमें हमारे राज्य से बाहर निकाला गया है और हम यहाँ पर ऐसे अवस्था में, दारिद्र्य अवस्था में हम जंगल में जी रहे हैं। तो ये कर्मों के फल व्यक्ति को कब मिलते हैं? क्या इसी जीवन में मिलते हैं या अगले जीवन में मिलते हैं? और जब कोई व्यक्ति अपने प्राण को त्यागता है, अर्थात जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय उसके कर्मों के फल जो है उसका पीछा कैसे करते हैं? जब व्यक्ति प्राण को त्यागता है तो उसके कर्मों के फल कहाँ निवास करते हैं? अगर उसको आने वाले जन्म में पिछले किए हुए पूर्व कर्मों का फल प्राप्त करना है तो ये फल निवास कहाँ करते हैं? तो ये प्रश्न मेरे मन में है, इनका समाधान कीजिए हे ऋषि मुनिवर। तो मार्कंडेय ऋषि प्रसन्न हुए इन प्रश्नों से और वहां जो सभा बैठी हुई थी उसकी ओर देखने लगे शांति से, और उनको स्मरण आया कि जब युधिष्ठिर महाराज राजा थे इंद्रप्रस्थ में, तो अपने राज दरबार पर बैठकर किस तरह से आराम से ऐसे ऋषि मुनियों की कथाएं सुनते थे, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों से घिरे हुए रहते थे। आज वही युधिष्ठिर महाराज जंगल में बैठे हैं, लेकिन फिर भी इतना सुंदर वातावरण था कि मार्कंडेय ऋषि को इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर महाराज का दरबार जो है उसकी याद आ गई। फिर मार्कंडेय ऋषि बड़े आराम से बोलने लगे कि देखो, जो जीव देहधारी होता है उसको अपने किए हुए कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जो व्यक्ति यह इस संसार का भोग करना चाहता है तो उसको अवश्य बारंबार यह जन्म लेना पड़ता है। जैसे वो कर्म करता है उसको जन्म मिलता है। अब ये जो सूक्ष्म शरीर है जिसमें मन बुद्धि और अहंकार है, इसमें हमारे सारी इच्छाएं हैं, सारे अनुभव हैं। आज तक जो भी हमने अनुभव किए हैं इतने लाखों लाखों जन्मों में इस जगत में, ये सारी इच्छाएं, ये सारे अनुभव हमारे मन में, हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थित हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर के अलावा एक स्थूल शरीर भी है जो कि हड्डी मांस रक्त इत्यादि से बना हुआ है। तो हे युधिष्ठिर, ये हमारे जो कर्म होते हैं उनके फल यमराज देखते हैं। यमराज के कई साथी होते हैं, उनके दूत होते हैं, वो हिसाब किताब रखते हैं हर एक व्यक्ति का, और यमराज कभी भूल चूक नहीं करते हैं। हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो इस दुनिया में दुख की सामना करते हैं, आने वाले जन्म में सुखी होते हैं। कोई लोग ऐसे होते हैं इस जन्म में सुख पाते हैं, अगले जन्म में दुख। कोई लोग ऐसे होते हैं तो इस जन्म में भी सुखी होते हैं, आने वाले जन्म में भी सुखी, और कोई लोग ऐसे होते हैं अब भी दुखी और भविष्य में भी दुखी। तो जो व्यक्ति अपने धन से प्रभावित होकर इस संसार का भोग करता है और पाप करता है, अवश्य इस जन्म में वो भौतिक सुख की प्राप्ति करता है, परंतु क्योंकि इसने इतने सारे पाप किए हुए हैं, अगले जन्म में उसको बहुत दुख मिलेंगे। इसके विपरीत जो तपस्वी है, जो इस जन्म में भौतिक सुख को त्यागता है, इस जन्म में भले वो भौतिक दुख प्राप्त करे, लेकिन आने वाले जन्म में वो भौतिक सुख की प्राप्ति करेगा। और जो व्यक्ति भले वो शादीशुदा हो, गृहस्थ आश्रम में हो, लेकिन अगर वो एक धर्म के अनुसार जीवन जी रहा हो, धर्म परायण और पुण्यवान हो, गुणवान हो, तो वो व्यक्ति इस जीवन में और आने वाले जीवन में भी सुख की अनुभूति करता है। और जो व्यक्ति धर्म की परवाह नहीं करता, शास्त्रों को जानने के लिए कोई चेष्टा नहीं करता, वो इस जन्म में भी दुखी है और आने वाले जन्म में भी दुखी होगा। और हे युधिष्ठिर, आप जान लो कि आप तो श्री कृष्ण के परम भगवान श्री हरि के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए आपको ये कर्म का कायदा स्पर्श नहीं कर सकता है। अगर आपके जीवन में ऐसी आपत्तियां और कष्ट आए हैं तो ये भी भगवान की कृपा समझो, जिसके माध्यम से भगवान आप सबका गौरव करना चाहते हैं। यही जो दुख की परिस्थिति है आपकी, जब आपका सब कुछ आपसे छीन लिया गया है, विश्वास करो आगे चल के यही आपके यश को फैलाने का कारण हो जाएगा। आप सबके गुणगान ब्रह्मांड भर में फैलेंगे और इस तरह से आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। इस तरह से मार्कंडेय ऋषि ने युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों का उत्तर देना शुरू कर दिया। सभी लोग बड़े ध्यान से उनका प्रवचन सुनते रहे। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते, मार्कंडेय ऋषि उत्तर देते, वो तो ज्ञान के भंडार थे, क्योंकि आखिर उनकी स्मृति शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। और ऐसे सारा दिन बीत गया। फिर युधिष्ठिर महाराज ने उनसे पूछा इस ब्रह्मांड के बारे में, इस सृष्टि के बारे में और इस सृष्टि को बनाने वाले के बारे में। उस समय मार्कंडेय ऋषि ने उनको एक बहुत ही अद्भुत इतिहास सुनाया, जिनमें उन्होंने स्वयं भी भाग लिया था। और ये इतना अद्भुत दृश्य है कि इसे सुनने पर हमें भी आश्चर्य हो जाएगा। तो मार्कंडेय ऋषि अपना ही इतिहास बता रहे हैं। कई लाखों लाखों साल पहले की बात है, मार्कंडेय ऋषि अपने आश्रम में बैठकर वो तपस्या कर रहे थे। वो भगवान श्री नारायण के ऊपर ध्यान केंद्रित करके पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बड़ा कठिन जीवन बिता रहे थे। तो ऐसे अवस्था में भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हुए। भगवान नर नारायण ऋषि के साथ के रूप में आए उनके सामने और कहने लगे कि हे मार्कंडेय ऋषि, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, तो कहिए क्या वरदान चाहिए आपको। उस समय मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे प्रभु, आपने हमें दर्शन दिया और ये दर्शन तो ब्रह्मा जी शिव जी के लिए भी बहुत मुश्किल है प्राप्त करना, और आप मेरे सामने आकर मुझे दर्शन दे रहे हैं, तो मेरे लिए जीवन में बाकी क्या रह गया, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं। परंतु आप अगर वरदान देना ही चाहते हैं तो कृपया ये वरदान दीजिए कि मैं आपकी माया शक्ति को देख सकूं। देखिए कितना भयंकर वरदान मांगा मार्कंडेय ऋषि ने। ये माया शक्ति क्या है? ये माया शक्ति भगवान की वो जादू की शक्ति है जिसमें इस ब्रह्मांड के सारे जीव अज्ञान में पड़े रहते हैं। वो भगवान को भूल जाते हैं, अपने आप को शरीर समझते हैं और भगवान से विमुख होकर इस संसार का भोग करने की चेष्टा करते हैं। ये सब माया के प्रभाव में है। माया मतलब माया, जो नहीं है वो। हम शरीर नहीं हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हम शरीर हैं। भगवान है, लेकिन हम सोचते हैं भगवान नहीं है। हमें संसार का भोग अनियमित तौर से नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल हमें यही सिखलाया जाता है घर में, स्कूल में, विश्वविद्यालय में, कि जितना चाहे उतना भोग करो और भोग करने से जीवन की सफलता प्राप्त होगी। ईश्वरो हम अहम भोगी, ऐसे असुरी प्रवृत्ति है कि हम ही नियंत्रण करने वाले हैं, भोग करना हमारा अधिकार है। तो ऐसी भावना जब आदमी रखता है या प्राणी रखता है तो हमें समझना चाहिए कि ये भगवान की माया शक्ति है जो उसको प्रभावित करके उसको अज्ञान के अंधकार में रख रही है। और अज्ञान के अंधकार में केवल दुख ही दुख होता है। लेकिन ये माया शक्ति से अगर हमें पार होना है तो हमें भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंतिते। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, ये मेरी जो माया शक्ति है वो मेरी दिव्य शक्ति है। क्योंकि भगवान की शक्ति है तो इस शक्ति का सामना कोई नहीं कर सकता। इस माया को पार करना दुरत्यया प्राय असंभव है। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंतिते, ये माया को आसानी से तैरा जा सकता है उस व्यक्ति से जो कि भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाता है। तो भगवान की माया शक्ति को देखना ये खतरे का काम है। अब बाहर जब हम संसार में दुनिया में जाते हैं तो सब जगह माया ही माया देखते हैं। सब दुनिया की चमक धमक देखकर हर एक व्यक्ति को लगता है कि ये बहुत आकर्षक है, कितना अच्छा है, इसका भोग करना चाहिए। तो बाहर भगवान की माया शक्ति बहुत प्रबल है, हम सबको वशीभूत करने के लिए तैयार है। लेकिन जब हम भगवान के मंदिर में आते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो हम माया से दूर रह सकते हैं। संसार का स्पर्श करते हुए भी हम शुद्ध जीवन बिता सकते हैं। पद्म पत्रम इवाम्भस, जैसे गीता में भगवान कहते हैं, एक कमल पत्र की तरह है, संसार में रहते हुए भी हम संसार के नहीं हो जाते। तो खैर, मार्कंडेय ऋषि ने जो वरदान मांगा, काफी मुश्किल था ये। तो भगवान ने कहा ठीक है, हंसे हल्के ढंग से भगवान, क्योंकि भगवान सोच रहे थे कि देखो बाद में जो होगा फिर मुझे शिकायत लेकर नहीं आना। तो इस तरह से मार्कंडेय ऋषि सोचने पड़ गए कि कब दिखाएंगे मुझे भगवान उनकी माया शक्ति। थोड़े दिन बीत गए और एक दिन जब मार्कंडेय ऋषि अपने आश्रम में बैठे हुए थे, अचानक बादल भर आए। जैसे आपने नाट्य लीला में देखा, संवर्तक बादल जैसे आए, वही संवर्तक बादल आए जो कि सृष्टि के संहार के समय प्रकट हो जाते हैं, और मूसलधार वर्षा होने लगी। सब जगह पानी 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 पानी, और इतना पानी हो गया कि सारा पृथ्वी लोक पानी से भर गया। केवल पृथ्वी लोक नहीं, लेकिन ऊपर के लोक भी भर गए, केवल ब्रह्म लोक रह गया। और सब जगह लोग त्राही त्राही मचा रहे, सब लोग कष्ट में, इतना पानी हो गया सारे ब्रह्मांड में, प्रलय का समय। और केवल मार्कंडेय ऋषि ही बच गए। और फिर वो उस जल में, प्रलय के जल में तैरने लगे, तैरने लगे। लेकिन समय बीतता गया, दिन बीत गए, महीने बीत गए, साल बीत गए, लाखों लाखों साल बीत गए, और मार्कंडेय ऋषि उस प्रलय के जल में ना तो जीवित रह पा रहे हैं ठीक से, ना मर पा रहे हैं। बड़ी विकट परिस्थिति। और इस तरह से मार्कंडेय ऋषि को पता नहीं चलता था कि आसमान कहाँ है और जमीन कहाँ है, पानी कहाँ है, दिन है या रात है। ऐसी अवस्था में लाखों साल बीत गए। और इस तरह से एक बार अचानक मार्कंडेय ऋषि ने आगे सामने एक विचित्र दृश्य देखा। क्या था वो दृश्य? एक पत्र था वहां पर, पत्ता, वट वृक्ष का पत्ता, और उसके ऊपर एक छोटा सा बच्चा था। मार्कंड ऋषि को बड़ी उत्सुकता हुई कि ये प्रलय के जल के बीच में ये बच्चा कहां से आ गया, और वो भी एक कमल पत्र, एक वट वृक्ष के पत्र के ऊपर। तो मार्कंडेय ऋषि वहां पर तैरते हुए चले गए। उन्होंने देखा कि यह बालक अति सुंदर है, काले घुंघराले बाल हैं, मोती जैसे दांत हैं, कमल जैसे आंखें हैं उसकी, और एक मरकत जो रत्न होता है उसकी तरह उसका श्यामल वर्ण है। वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि है और श्रीवत्स का चिन्ह भी है। तो मार्कंडेय ऋषि के मन में संशय हुआ, अरे क्या ये भगवान विष्णु तो नहीं? लेकिन फिर भी निश्चित रूप से निष्कर्ष पहुंच नहीं पाए। तो जब पास में आए तो बड़े गौर से देखने लगे कि ये बच्चा क्या कर रहा है। बच्चे ने मार्कंडेय ऋषि को देखा और फिर बच्चे ने अपने ही कर कमलों से अपने सुंदर चरण कमलों को उठाया और अपने ही मुंह में डाल दिया और अपने ही चरण कमलों को चूसने लगा। आपने कई बार देखा होगा छोटे छोटे बच्चे अपने ही पैरों को चूसते हैं, ये छोटा बच्चा ऐसे करने लगा। सुंदर दृश्य है ये। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। ऐसे भक्तों ने वर्णन किया है इस सुंदर दृश्य को। क्या देखा उन्होंने? करारविंदेन पदारविंदम, करारविंद अपने सुंदर कर कमलों से, पदारविंद अपने चरण कमलों को उठाया है, मुखारविंदे अपने सुंदर मुख में डाल दिया है, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम एक वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर शयन कर रहे हैं ये बच्चे, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामी ऐसे बाल मुकुंद बाल कृष्ण का स्मरण मैं करता हूँ, ऐसे भक्त ने इस सुंदर दृश्य को मन में रखते हुए इस श्लोक की रचना की है। तो यही दृश्य मार्कंडेय ऋषि ने देखा, आश्चर्यचकित हो गए, वो समझ पाए कि ये तो भगवान ही है। तो भगवान अपने चरण कमलों को चूसते क्यों है, क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में वैष्णव आचार्यों ने टीका की है। वो कहते हैं कि जो भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान के चरण कमलों के प्राप्ति के लिए आतुर रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल मधु के समान नीचे हैं, और जो भक्त होते हैं वो भौरे के समान हैं, जो कि हमेशा मधु के पीछे भागते हैं, शहद के पीछे। तो भगवान के भक्त इतने आतुर होते हैं श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण भी हैरान हो जाते हैं कि मेरे चरण कमलों में क्या जादू है जो कि मेरे भक्तों को चाहिए, मेरे चरणों में कौन सा अमृत है जिसका पान मेरे भक्त करके इतना आनंद की अवस्था में रहते हैं। तो फिर श्री कृष्ण सोचते हैं, चलो मुझे भी मेरे चरण कमलों के अमृत का स्वाद लेना चाहिए। और केवल एक छोटे बच्चे के रूप में वो ऐसा कर सकते हैं। एक बड़ा आदमी अगर अपने पैर को चूसे तो ये अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन बच्चा जब अपने पैरों को चूसता है तो इसके बारे में कोई टीका नहीं करता, निंदा नहीं करता। तो खैर, मार्कंडेय ऋषि ये सुंदर दृश्य देख रहे थे, और अचानक क्या हुआ, उस सुंदर बालक ने सांस अंदर ले लिए, और जैसे ही सांस अंदर लिया मार्कंडेय ऋषि सीधे उनके नसिकों के अंदर चले गए, जैसे कि एक छोटा सा मच्छर को कभी कभी हम अंदर अपने सांस से ले लेते हैं। और जब अंदर पहुंच गए उस बालक के पेट में चले गए। उस बालक के पेट में जाकर क्या देखते हैं, यहां तो सारे ब्रह्मांड है, केवल एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। यहां पर सारे ग्रहों का, लोकों का, तारों का दर्शन कर लिया मार्कंडेय ऋषि ने। अंदर सारे नदियां, समुद्र, पहाड़, सारे वृक्ष, 84 लाख योनियां वहां पर थी, पृथ्वी लोक, तरह तरह के दृश्य देखे। और मार्कंडेय ऋषि को समझ में आया कि ये तो स्वयं भगवान है, और मैं क्या देख रहा हूं। और देखते देखते फिर उस बालक ने सांस बाहर निकाले। जैसे ही बच्चे ने सांस बाहर लिया तो क्या हुआ, मार्कंडेय ऋषि भी बाहर आ गए और दोबारा उसी प्रलय जल में वो डूबने लगे, तैरने लगे। फिर मार्कंडेय ऋषि ने उस बालक की ओर देखा और अपने आठ हाथ जो है वो आगे बढ़ाकर उस बच्चे का आलिंगन करने के लिए गए, लेकिन उस समय वो बच्चा, वो बालक वहां से अदृश्य हो गया। और फिर मार्कंडेय ऋषि को उस बालक ने बहुत सुंदर उपदेश दिए, सारे ब्रह्मांड के का सृजन कैसे होता है, पालन कैसे होता है, विनाश कैसे होता है, सारा आध्यात्मिक ज्ञान स्वयं भगवान ने मार्कंडेय ऋषि को दिया। कि अरे ये सब तो भगवान के माया का प्रदर्शन था। इसका मतलब है कि भगवान ने अपनी सुंदर माया शक्ति ऐसे दिखा दी मार्कंडेय ऋषि को कि मार्कंडेय ऋषि को लगा कि लाखों लाखों साल वो प्रलय के जल में घूम रहे थे और वास्तव में थे, परंतु मार्कंडेय ऋषि को पता नहीं चला कि समय कैसे बीत गया है और फिर से वो अपने ही आश्रम में लौट कर आ गए। तो इस तरह से भगवान ने उनकी माया शक्ति मार्कंडेय ऋषि को दिखा ली। बाल गोपाल के रूप में भगवान उस वट वृक्ष के पत्र पर प्रकट हुए थे उनके सामने। तो जब ये सुंदर घटना मार्कंडेय ऋषि ने पांडवों को सुनाई तो बड़े प्रेम भरे आंखों से मार्कंडेय ऋषि श्री कृष्ण की ओर देखने लगे, जो कि चुपचाप पांडवों के बीच में बैठे थे कि मानो वो भी एक साधारण मनुष्य है। कृष्ण की ओर देखकर पुनः युधिष्ठिर महाराज की ओर देखे और कहने लगे, हे युधिष्ठिर, वही बालक जिसका दर्शन मैंने प्रलय जल के ऊपर किया था, उस वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर जिस बच्चे ने मुझे अपने पेट में सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया, जिस बच्चे ने मुझे दिव्य उपदेश दिया, वही बच्चा जो श्री हरि है, श्री नारायण, आज यहाँ पर तुम्हारा मित्र बनके, तुम्हारा संबंधी बनके तुम्हारे बीच में एक साधारण आदमी की तरह बैठा है। और फिर मार्कंडेय ऋषि ने श्री कृष्ण की ओर इशारा किया और कहने लगे कि यही है श्री कृष्ण, जो कि उस भगवान के रूप से अभिन्न है, वही श्री हरि अब यहाँ कृष्ण या केशव के रूप में तुम्हारे बीच में आए हैं युधिष्ठिर, इसमें कोई संदेह नहीं करना, वही भगवान है ये। जब श्री कृष्ण के बारे में ऐसे उन्होंने कहा तो श्री कृष्ण मनुष्य लीला कर रहे हैं तो वो थोड़े शर्मा गए, अपना सर झुका दिया। लेकिन मार्कंडेय ऋषि ने कहा, युधिष्ठिर संशय नहीं करो, तुम्हारे इस भाई को, इस मित्र को साधारण मनुष्य नहीं समझो, यही वही परम सत्य है जिनका दर्शन मैंने लाखों लाखों साल पहले किया था। आज मनुष्य समाज में आकर ऐसे लीलाएं कर रहे हैं, तो उनके शरण में जाओ। तुम बहुत भाग्यशाली हो युधिष्ठिर कि तुम्हें इनका संग प्राप्त हुआ है, तुम्हारे मित्र बनकर वही परम सत्य भगवान तुम्हारे घर में रह रहे हैं, तुम्हें मिलने के लिए जंगल में आ रहे हैं, तुम सबका अहो सौभाग्य है। इस तरह से मार्कंडेय ऋषि ने श्री कृष्ण की सही पहचान करा के दी। जो पांडव थे उनके आंखों में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का अंजन लगाया हुआ था, इसलिए वे श्री कृष्ण को अपना मित्र ही समझते थे, कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं जानते थे। लेकिन जब मार्कंडेय ऋषि ने इस सत्य को बताया, सारे पांडव आश्चर्यचकित हो गए। और फिर कथा चलती रही। जब शाम का समय हो गया तो मार्कंडेय ऋषि वहां से चले गए, कृष्ण भगवान भी अपने द्वारका धाम चले गए, नारद मुनि अपनी जगह चले गए और सारे पांडव वहां पर आश्चर्यचकित रह गए। उनको पता चल गया कि वही केशव, वही जनार्दन, मधुसूदन, जिनको वो अलग अलग नामों से बुलाते हैं, उनके प्रिय मित्र, वही परम सत्य हैं, वही भगवान है। तो भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए थे ऐसे ही सुंदर लीलाएं उन्होंने प्रकट किए थे। जिनके आंखों में प्रेम नहीं है, जिनके हृदय में श्रद्धा और भक्ति भावना नहीं है, वो कभी भगवान को जान नहीं सकते। इसलिए हालांकि श्री कृष्ण स्वयं सबके आंखों के सामने प्रकट हुए थे 5000 वर्ष पूर्व, फिर भी कई ऐसे लोग थे जो उनको देखते हुए भी नहीं देख पाए। पश्यन्नपि न पश्यति। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को देखा लेकिन पहचाना नहीं कि ये भगवान है। बल्कि जब दुर्योधन ने विराट रूप दिखाया श्री कृष्ण को, अब क्षमा कीजिए, कृष्ण ने दुर्योधन को विराट रूप दिखाया, तब दुर्योधन को गुस्सा आया। दुर्योधन ने फिर भी माना नहीं कि कृष्ण भगवान है। लेकिन पांडवों के मन में इतना स्नेह था कि बड़े आदर से वह हमेशा श्री कृष्ण के संग के अभिलाषी रहते। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम।
वो कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे कई लोग होते हैं जो मूढ़ हैं, मूर्ख लोग होते हैं, अज्ञान के वश में पढ़कर वो मुझे नहीं पहचान सकते, मुझे कोई साधारण व्यक्ति मानते हैं और ये भूल जाते हैं कि मैं वास्तव में सारे प्राणियों का स्वामी हूँ, मैं अनंत कोटि ब्रह्मांडों का उद्गम हूँ। नाहम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृत, मूढ़ो यम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। हे अर्जुन, मैं ऐसे लोगों के नेत्रों के सामने माया का पर्दा डाल देता हूँ जिससे कि वो मुझे पहचान नहीं सकते हैं। इस तरह से ये माया की शक्ति सर्वव्यापी है इस भौतिक जगत में, और आधुनिक काल में तो हम देखते हैं कि माया शक्ति का प्रभाव इतना तीव्र हो गया है जनसाधारण के ऊपर कि कोई भी भगवान के भक्ति में आने के लिए तैयार नहीं है। और दुर्भाग्य से आजकल ये टेलीविजन आ गया है, टेलीविजन तो माया का मूर्तिमान स्वरूप है जो नुकसान हमारे संस्कृति को लाखों लाखों सालों में नहीं हुआ, केवल इन 10, 20, 25, 50 सालों में इस एक टेलीविजन ने कर दिया। दिन भर लोग इस टेलीविजन के सामने बैठते हैं। पहले जहां घर घर में छोटे छोटे मंदिर हुआ करते थे और वहां परिवार के सदस्य एकत्र होकर भजन कीर्तन कथा किया करते थे, आज उस मंदिर का स्थान टीवी ने ले लिया है, और जहां लोग बैठकर भजन कीर्तन करते थे आज ये टीवी के कार्यक्रम देखते हैं, कौन से सिनेमा चल रही है, सिनेमे का गाना, ये सब नाच गाना देखते रहते हैं दिन भर, और फिर शिकायत करते हैं कि हमारे जीवन में दुख है। जब दिन भर हम यही माया के वशीभूत रहेंगे, भगवान से विमुख हो जाएंगे, तो सुख कहां से आएगा। अब सब जगह लोग त्राही त्राही मचा रहे हैं, बारिश नहीं बारिश नहीं, किसान भी बड़े दुखी हैं, लेकिन जब यज्ञ नहीं हो रहा है, नाम संकीर्तन नहीं होता है, तो फिर वर्षा आएगी कहां से। अगर हम लोग भी बिजली इस्तेमाल करते हैं, पानी इस्तेमाल करते हैं, और नगर पालिका को हम टैक्स या कर नहीं भरते हैं, किराया नहीं देते हैं, तो नगर पालिका हमारी बिजली जल को के कनेक्शन को काट देगी। तो हम लोग भगवान के दिए हुए सारे पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, जल, उष्णता, प्रकाश, मिट्टी, फल, फूल, कितने सारे चीजें भगवान ने हमको दिए हैं, लेकिन हम सब कुछ मुफ्त में उपयोग करना चाहते हैं, भगवान के सृष्टि का भोग करना चाहते हैं, भगवान की अनुमति भी नहीं लेना चाहते हैं। तो फिर अगर सबके जीवन में पीड़ा नहीं होगी तो और क्या होगा। इसलिए भगवत गीता का संदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सारे धर्मों को त्याग दो, केवल मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो नहीं। तो भगवान की भक्ति करने से हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पति अगर इसमें आए तो सन्यासी हो जाएंगे, नहीं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी पत्नी अगर चली गई तो घर का काम नहीं करेंगे, हम भूखे रह जाएंगे घर में, वो सब मंदिर में काम करेगी, नहीं। तो हमें कोई प्रकार का डर नहीं, भगवान कह रहे हैं केवल मेरे शरण में आओ, सारे त्रिविध तापों से मैं मुक्त कर दूंगा तुम्हें। यह है भक्ति का बड़ा सुलभ और आनंद प्रदायी मार्ग। केवल भगवान की भक्ति में ही आनंद है। ये भौतिक जगत एक रेगिस्तान के बराबर है, रेगिस्तान में पानी कहां मिलेगा। उसी तरह से इस भौतिक जगत में सुख नहीं पाया जा सकता है, तो हमारा समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए संसारी सुख प्राप्त करने के लिए। हमारा मूल्यवान मनुष्य देह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए। चाणक्य पंडित कहते हैं कि मनुष्य जीवन का हर एक क्षण बहुत मूल्यवान है, करोड़ों करोड़ों रुपए देने से भी हमारे बीते हुए जीवन को हम वापस नहीं ला सकते। कोई व्यक्ति कहे मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, इन करोड़ों रुपए से मैं मेरे युव अवस्था को वापस खरीद लेना चाहता हूँ, तो प्रकृति कहेगी नहीं, आपको आगे ही चलना होगा, बुढ़ापे के बाद आएगी मृत्यु, मृत्यु के बाद आएगा पुनर्जन्म, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म निश्चित है, ये प्रकृति का कानून है। तो चाहे हमें बुढ़ापा नहीं भी पसंद हो, लेकिन हमें बुढ़ापा स्वीकार करना पड़ेगा, मृत्यु स्वीकार करना पड़ेगा, जन्म स्वीकार करना पड़ेगा। इस तरह से ये चार प्रमुख दुख हैं जिनका वर्णन गीता में भगवान करते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जो तो बुद्धिमान व्यक्ति है वो बहुत गहराई में सोचता है कि जब तक ये बीमारी बुढ़ापा मृत्यु और जन्म है तब तक हमें यहाँ सुख नहीं है, केवल भगवान की भक्ति करने से हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हैं। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण होते हैं, हमें अच्छे अच्छे उपदेश देते हैं, जैसे भगवद गीता या श्रीमद भागवत में उद्धव गीत, और अपने सुंदर लीलाओं से द्वारा वो हमारा मन उनकी ओर आकर्षित करते हैं। आज उनका जन्म दिवस है, प्राकट्य दिवस, आविर्भाव दिवस। आज के दिवस पर हम श्री कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे अंधकार से भरे हुए जीवन में वो ज्ञान का प्रकाश प्रदान करें, हमारे दुख भरे जीवन में वो भक्ति का आनंद प्रदान करें। यही मनुष्य जीवन की सफलता है। भगवान ने हमारे लिए कलयुग में उनकी प्राप्ति का मार्ग बहुत आसान बना दिया है, केवल उनके नाम उच्चारण करने मात्र से हम उनकी प्राप्ति कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कली संतरण उपनिषद में ये महामंत्र का वर्णन आता है, जिस महामंत्र का उच्चारण करने मात्र से बहुत ही जल्दी हमारे जीवन में भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति की भावना जागृत हो जाती है। कोई भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, जवान भी, बच्चा भी कर सकता है, चाहे कोई दुबला हो, पतला हो या मोटा हो, वो भी कर सकते हैं, शिक्षित अशिक्षित सभी लोग कर सकते हैं, पुरुष स्त्री डॉक्टर इंजीनियर सभी लोग कर सकते हैं, कोई सीमा नहीं। और इस भक्ति मार्ग में कोई जाति भेद भी नहीं है, भगवान कृष्ण की आंखों में कोई ऊंचे जाति का नहीं, कोई नीचे जाति का नहीं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिश्चैव शपाके च पंडिता समदर्शनः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो वास्तव में पंडित है वो इस तरह से भेदभाव नहीं करता, ऊंचा नीचा वो भेद नहीं करता। ये भक्ति मार्ग में सभी के लिए स्थान है, भगवान की दृष्टि में कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराय नहीं, सब अपने हैं भगवान के लिए। अयोग्य से अयोग्य व्यक्ति भी, कितना भी पापी भी क्यों न हो, वो भी अगर श्री कृष्ण के शरण में जाए वो भी अच्छा संत हो सकता है, भगवान का शुद्ध भक्त हो सकता है। कितने उदाहरण हैं ऐसे, वाल्मीकि मुनि का उदाहरण तो आप सब जानते ही हैं, पहले तो कितने बड़े डाकू थे, लेकिन नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त के प्रति जब उन्होंने श्रद्धा भावना रखी, उनके आदेश का पालन किया, तो उनका जीवन सफल हो गया और वो भी भगवान श्री रामचंद्र के शुद्ध भक्त हो गए। तो इस संसार में, खास करके कलयुग में, हम सब की कोई पात्रता नहीं है। यहां कौन व्यक्ति तपस्या कर सकता है कलयुग में, संभव नहीं है। वो मानसिक शक्ति भी हमारे अंदर नहीं है, वो योग्यता नहीं, वो गुण नहीं हमारे अंदर। सभी लोग धनवान बनना चाहते हैं, कोई गुणवान नहीं बनना चाहता। तो ऐसे अवस्था में कौन व्यक्ति है जो जंगल में जाके तपस्या करे, बहुत कठिन है। ये कलयुग दोषों का सागर है। कलो दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगह परम व्रजेत। श्रीमद् भागवत का कथन है कि ये कलयुग दोषों का सागर है, जहां भी आप देखेंगे वहां दोष ही दोष दिखाई पड़ते हैं, कोई अच्छी खबर नहीं दिखाई पड़ती। आप अखबार पढ़िए, किसी से बात कीजिए, जगह जगह से दुख भरे खबरें सुनाई पड़ती हैं, सब जगह दोष ही दोष। परंतु सुखदेव महाराज परीक्षित महाराज से कहते हैं कि हे राजन, अस्ति ही एक महान गुण, लेकिन इस दुख के सागर में, इस दोष के सागर में एक महान गुण है, और वो क्या है? कीर्तनाद एव कृष्णस्य, भगवान श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन। तो जब हम भक्तों के संग में आकर कृष्ण कीर्तन करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, कृष्ण का दर्शन करते हैं, कृष्ण प्रसाद का सेवन करते हैं, तो ऐसे सुलभ और सहज उपाय से हम हमारे मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। तो ये भगवान की भेंट है हम सबके लिए, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष में हमें उनसे धन्यवाद करना चाहिए कि आपने इतनी असीम कृपा करके हमारा जीवन सफल बनाने के लिए, हमारे जीवन में सुख लाने के लिए आपने इतना अच्छा मार्ग बतलाया है हमको। हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि हम आपके इस भक्ति मार्ग को स्वीकार कर सकें, आपके पवित्र नामों का सदैव हम उच्चारण कर पाएं। ये प्रार्थना उनके जन्म दिवस पर हमें आज करनी चाहिए। भगवान तो बड़े कृपालु हैं ही, परंतु कोई भी व्यक्ति अपने जन्म दिवस के ऊपर ज्यादा उदार हृदय से रहता है। आज भगवान हमारे जो भी वरदान है वो पूरी कर देंगे, लेकिन कृपया श्री कृष्ण के पास जाकर ये मत मांगिए कि हमको धन दीजिए, हमको हमारे व्यवसाय में प्रगति दीजिए, हमें सौंदर्य दीजिए, अच्छा पति या पत्नी दीजिए, परीक्षा में अच्छे नंबर दीजिए, ऐसे प्रार्थना मत कीजिए, ये व्यवसाय हो जाता है। ये प्रार्थना कीजिए कि भगवान कृष्ण हमें आपके प्रति हमारे हृदय में आकर्षण दीजिए, ताकि हम आपकी अहित की अप्रतिहता भक्ति करें। यही सबसे ऊंचा धर्म है। सवै पुंसान परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। भागवत का निष्कर्ष है, सबसे ऊंचा धर्म है भगवान श्री हरि की भक्ति करना। तो ही अनमोल भेंट हमें बड़े गंभीरता से स्वीकार करना चाहिए और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए। आप सब यहाँ पर इतना समय निकालकर आए, भगवान के जन्म दिवस के उत्सव में, अनुष्ठान में भाग लेने के लिए आए, इसलिए हम सब के आपके बहुत आभारी हैं। इस मंदिर में ऐसे सत्संग के कार्यक्रम चलते रहते हैं, हर रोज प्रातःकाल यहाँ कार्यक्रम होते हैं और बड़े बड़े उत्सव यहाँ भी मनाए जाते हैं। तो कृपया इन उत्सवों में शामिल होइएगा, इनसे हमारी भक्ति की वृद्धि होती है, हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, हृदय का शुद्धिकरण होता है। तो कृपया इस मंदिर का फायदा उठाइएगा, यह आपका मंदिर है, ये किसी व्यक्ति का या किसी संस्था का नहीं है, आप सबका है, ये भगवान का घर है, इसलिए आपका भी घर है। कृपया यहाँ पर आकर इस भक्ति मार्ग में चलिए और आनंद की अनुभूति कीजिए, अपना मनुष्य जीवन सफल बनाइए। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण।